SBS हिंदी।
तो रोहित जी, ऐसी खबरें हैं कि 3 नए वीजा सरकार ने पेश किए हैं, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों वीजाज के बारे में?
हाँ जी, जो 3 नए वीजाज आए हैं, इन्होंने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग वीजाज थे उनको ओवरहॉल करके उनकी जगह पे 3 वीजे रिप्लेस किए हैं। जैसे पहले एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड RSMS 187 वीजा होता था, वो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी थी। एक रीजनल जो कि स्पॉन्सर्ड वीजा था, उसमें रिलेटिव स्पॉन्सर भी कर सकते थे और जो है कि रीजनल बॉडीज जो है वो भी स्पॉन्सर कर सकती थी। 489 वीजा, वो 4 साल का वीजा होता था। ये 2 वीजों को रिप्लेस करके नए वीजे लेके आए। 187 की जगह आ रहा है 494 वीजा,
वो 494 वीजा,
हाँ जी 494, वो डायरेक्ट PR नहीं होगी जैसे RSMS होती थी 187। ये प्रोविजनल वीजा होगा जिसमें आपको रीजनल एरिया में रहना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी 191 वीजा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम 489 की जगह पे ये 491 वीजा लेके आ रहे हैं, उसमें भी कंडीशन सेम ही है कि 3 साल रहने के बाद आप 191 वीजा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जो 191 वीजा है, ये भी इन्होंने रिप्लेस किया 887 वीजा से। पहले क्या होता था, जब आप 489 वीजा डालते थे, 4 साल का वीजा मिलता था, 2 साल आप रीजनल एरिया में रहने के बाद आप 887 के लिए डायरेक्ट PR के लिए एलिजिबल होते थे। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग सब क्लासेस को ओवरऑल करके 3 नई सब क्लासेस बनाई है। इसमें जो एडवांटेज है वो एप्लीकेंट्स को बहुत सारी एडवांटेज होने वाली है इसमें। रीजन बीइंग कि ये जो वीजा लेके आए हैं, साथ साथ में इन्होंने पॉइंट टेस्ट में भी चेंजेस लेके आए हैं।
तो पॉइंट टेस्ट में क्या चेंजेस हैं, अगर आप एक बार समझा दें तो?
हाँ जी, पॉइंट टेस्ट में ये है कि अभी आपने देखा था लास्ट ईयर इन्होंने जो चेंज किया था, एक बहुत मेजर चेंज किया था कि मिनिमम बेंचमार्क 60 से 65 कर दिया था। उससे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ऑनशोर या ऑफशोर से जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, वो डिसएडवांटेज हुए थे। रीजन बीइंग कि वो अगर आप 489 के भी पॉइंट्स डालते थे तो 65 पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो 6 ईच के साथ 65 नहीं हो पा रहे थे। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एडिशनल पॉइंट्स जो है वो एलोकेट किए हैं एप्लीकेंट्स को। हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारे
जी।
अब जैसे पहले जैसे स्पाउस होता था, आप मैरिड है तो आपका जो स्पाउस है वो स्किल्ड है और उनकी इंग्लिश भी जो है वो कॉम्पिटेंट है, जैसे जिसको हम IELTS में 6 ईच कहते हैं या PT में उनके 50 ईच होते हैं, तो उसके 5 पॉइंट मिलते थे। अब उन्होंने उसको 10 पॉइंट कर दिया तो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे उसके, कि अगर आपका पार्टनर जो है वो स्किल्ड है और उनकी इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटेंट है। अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपके जो स्पाउस है वो चाहे स्किल्ड नहीं भी है, चाहे उनके पास स्किल असेसमेंट नहीं भी है, वो सिर्फ कॉम्पिटेंट इंग्लिश कर लेते हैं, सिर्फ 6 ईच कर लेते हैं, तब भी जो है वो 5 पॉइंट मिलेंगे आपको, जो कि पहले नहीं मिलते थे। तो सिर्फ आपने 6 ईच लिए तो पार्टनर के पॉइंट मिल गए 5 आपको। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डाटा देखा पिछला जो सारा था, उन्होंने देखा कि जब भी कोई एप्लीकेशन डालता है तो सेकेंडरी एप्लीकेंट्स जो है वो 50% तो सेकेंडरी एप्लीकेंट्स की माइग्रेशन हो रही है, चाहे वो स्किल्ड है या है वो नहीं है।
Okay.
तो उससे क्या हो रहा था कि जो इंडिविजुअल्स जो मैरिड नहीं है बट उनकी कैपेबिलिटीज है वो पीछे रह रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी एप्लीकेंट्स को PR मिल रही है। तो उन्होंने इस डिसएडवांटेज जो सिंगल एप्लीकेंट्स है जो मैरिड नहीं है, इवन दो उनके पास कैपेबिलिटीज है, उनको इक्वलेंट करने के लिए उनको 10 पॉइंट सीधे दे दिए कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट सीधे।
ओके, तो मतलब वो बिना किसी बात के शादी ना करने के 10 पॉइंट्स मिल गए उनको।
हाँ 10 पॉइंट्स, लेकिन उनका भी मींस अब आज की डेट में जो सिंगल है वो खुश होगा, पहले उनको होता था कि हमारे को पार्टनर के पॉइंट नहीं मिलते, आज की डेट में वो बहुत खुश होंगे कि हमारी मैरिज शादी नहीं हुई हुई है, क्योंकि उनको सीधे 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आप देखिए ना, गवर्नमेंट का जो उनका जो पिछला एनालिसिस है वो बहुत अच्छा एनालिसिस है ये इसके पीछे कि सेकेंडरी एप्लीकेंट जो जिनका कोई स्किल नहीं है या जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है वो PR और सिटीजन बन रहे हैं, बट जो एक इंडिविजुअल अपना जिसकी कैपेबिलिटीज है उसकी इनविटेशन नहीं आ रही है। लेकिन क्योंकि जो कोटा कहते हैं हम 180 190 जो 160 हो गया, उसको सेकेंडरी एप्लीकेंट्स भी उसको वो ले रहे हैं ना बीच में उसके, तो इंडिविजुअल जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है। तो उनका बेस ठीक है, वो कह रहे हैं अगर आप शादीशुदा हो, अगर अपने पार्टनर को साथ में लेके आना चाहते हो, अगर उनके पास स्किल है उनकी इंग्लिश है आपको भी पॉइंट मिलेंगे, बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको भी उतने ही पॉइंट मिलेंगे।
बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू थ्री न्यू वीजाज, वो कब से लागू होंगे?
ये नवंबर से शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, उसमें क्या होगा ना कि जैसे तीन साल जैसे मैंने बात की है, जब आप 494 मिलेगा, जब आपको 491 मिलेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको तीन साल उस वीजा पे रहने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 191 वीजा के लिए।
ओके।
तो 191 वीजा इफेक्टिवली जब हम नवंबर 2019 की बात कर रहे हैं, तो नवंबर 2022 से ही वो ऑपरेशन में आएगा फिर, क्योंकि उससे पहले एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी उसको डालने।
वो वीजा वर्चुअली फिर 191 जो है वो नवंबर 2022 से ही शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए वो एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से जिनके पास कुछ एलिजिबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं अभी, ऐसा नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी, वो डेफिनेटली, क्योंकि उसकी मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 494 और 491 होना चाहिए, जो कि रेगुलेशन जो है वो कमेंस हो रही है 16th नवंबर 2019 को। जब हम इफेक्टिवली बात करें तो एलिजिबिलिटी अराइज ही नहीं हो सकती 16 नवंबर 2022 से पहले इस वीजा के लिए, 191 के लिए अगर हम बात करें।
लेकिन ये तीनों वीजाज बेसिकली हैं लोगों को रीजनल एरियाज में भेजने के लिए।
हाँ जी, इसमें दो चीजें हैं जो देखने वाली है। एक तो अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं, इट्स अ वेरी गुड न्यूज जो कि एप्लीकेंट्स के लिए है। इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए इसलिए कि उनको वीजा मिल रहा है, गवर्नमेंट के लिए उनके लिए विन सिचुएशन ये है कि जैसे हम बात करते रहते हैं हमेशा कि मेलबर्न और सिडनी जो है वो ओवरक्राउडेड हो रहे हैं, तो रीजनल एरियाज में लोग जो है वो जाएंगे, क्योंकि तीन साल की कंडीशन रखी है, तो वो तीन साल वहां पर उनको रहना ही पड़ेगा।
वेल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी ये जानकारी देने के लिए।
नो प्रॉब्लम विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।